हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास विषय विज्ञान के चैप्टर 12 में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर का शीर्षक है आकाशीय पिंड एवं भारतीय पंचांग, जिसे इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी एंड इंडियन कैलेंडर कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी के बारे में आप क्या समझते हैं? आकाशीय पिंड, आकाश से तो हम सब वाकिफ हैं, आसमान जो हमें दिन या रात में ऊपर की ओर दिखाई देता है उसे आकाश कहते हैं, और उस आकाश में जो जो वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उसे हम आकाशीय पिंड कह सकते हैं। जैसे दिन में हमें सूर्य, रात में चांद और अनेकों तारे दिखाई देते हैं, उनमें कुछ ग्रह भी होते हैं और उन तारों में कुछ खास तारे भी होते हैं, तथा तारों के समूह को कुछ खास नाम से भी पुकारा जाता है। क्या होता है तारों के समूह को, क्या बोलते हैं? क्या तारे एक जगह पर ही रहते हैं या वो अपनी स्थिति को बदलते हैं, या हमारी स्थिति बदलने की वजह से तारों की स्थिति बदलती है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इनकी गति में क्या संबंध है? क्या हमें उससे कोई प्रभाव होता है? भारतीय पंचांग क्या है? पंचांग शब्द का मतलब क्या है? क्या हमारे यहाँ जो कैलेंडर है वो किसी खास आकाशीय संबंध से बना है? किस पर निर्भर करता है हमारे देश का कैलेंडर, या जिस कैलेंडर को हम यूज करते हैं क्या वो किसी प्राकृतिक गति पर डिपेंड करता है, या कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठकर लिख देता है? एक घटना जिसे आम भाषा में ग्रहण कहते हैं वो क्या होता है? एक खास धर्म के अनुसार कहा जाता है कि कुछ राक्षस ग्रहों को और तारों को खाते हैं, क्या यह सच है? हम उस धार्मिक मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करेंगे। हमारे सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 9 या 8? प्लूटो को ग्रह अब क्यों नहीं कहा जाता? संक्रांति किसे कहते हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन से आप क्या समझते हैं? पारगमन क्या होता है? तिथियां, राशियां, ये सब क्या होती हैं? हिंदू कैलेंडर में जो महीनों के नाम होते हैं वो सभी नाम किस प्रकार से रखे गए हैं? क्या उन सभी महीनों के नाम में कुछ जानकारी छिपा है? हम उसे भी खोजेंगे। क्या उन महीनों के नामों पर कोई आकाशीय समीकरण भी है, या आकाश में किसी ग्रह की गति के अनुसार उन महीनों का नाम रखा गया है? चांद जो प्रतिदिन अपने आकार को बदलता रहता है, क्या यह सच है? या आकार बदलता हुआ हमें दिखाई देता है, यह सच है? सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। विज्ञान यही तो है जो विशेष ज्ञान है। जो दिखता है वो विज्ञान नहीं है। क्यों दिखता है इस बात की हम खोज करेंगे। आकाशीय पिंडों तथा खगोलीय पिंड के बारे में हमने कितनी जानकारी हासिल की है? हमारे देश ने और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में किन जानकारियों को बहुत पहले ही हासिल कर लिया था? क्या उस ज्ञान का उपयोग हम आज भी करते हैं? वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खगोल और आकाशीय पिंड के बारे में गहन अध्ययन किया है? हम उनके अध्ययन को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के साथ साथ हम इस अध्याय में खगोलीय पिंड, भारतीय पंचांग, नक्षत्र, सौर्यमंडल एवं इसके ग्रह, राशियां, उत्तरायण, दक्षिणायन, बुध एवं शुक्र पारगमन, तिथियां, भारतीय महीनों के नाम का आकाशीय संबंध, भारतीय वैज्ञानिकों की जानकारी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और फिर प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। आप अपने किताब में पेज नंबर 141 को देखिए। अध्याय 12 आकाशीय पिंड एवं भारतीय पंचांग। सबसे पहले हम खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आप पहले ही पृष्ठ पर चित्र 12.1 को देखिए। कितना सुंदर दृश्य है। क्या आपने कभी रात को आसमान में असंख्य तारों को जगमगाते हुए नहीं देखा? और उन्हीं के बीच अगर चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद हो, कितना अद्वितीय दृश्य होगा। उन्हीं में जानकारी छिपी होती है, उन तारों, उन चमकते हुए तारों में, उनकी गतियों में, चंद्रमा के बदलते हुए आकार में। कितना रोचक होता है। वैज्ञानिक इन्हीं सबको देखकर तो आकर्षित होते हैं, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। क्या आप भी पढ़ने और रिसर्च करने के लिए इच्छुक नहीं हैं? क्या आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए हम पढ़ते हैं इस अध्याय को, जहां हम रात में जगमगाते हुए तारों, चांद और उनकी गतियों से संबंधित हमारे पंचांग को समझेंगे। हमारा पंचांग क्यों खास है, इस बात की भी जानकारी हम यहां लेंगे। खगोलीय पिंड किताब को देखिए। आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा कि पहेली तथा बुझो ने रात्रि के खुले आकाश में चांद तारों का सुंदर दृश्य देखा था। आप भी अंधेरी रात में यह मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। दृश्य में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। कुछ बहुत अधिक चमकीले हैं, कुछ कम चमकीले हैं, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते। कुछ तारे समूह के रूप में पास पास दिखते हैं। कुछ तारों के समूह को देखने पर कुछ विशेष आकृतियां भी बनती प्रतीत होती हैं। तो ऐसा है हमारे ब्रह्मांड का कुछ परिदृश्य। खगोलीय दूरबीन की सहायता से और भी अन्य खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं, जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते। सूक्ष्मता से देखने पर यह दृश्य समय के साथ बदलता है, क्योंकि सभी खगोलीय पिंड गतिशील हैं। गतिविधि 12.1। सभी विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटें। शिक्षक निम्न प्रश्न श्याम पट पर लिखें। आपने जिन खगोलीय पिंडों को देखा है या उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, उनके नामों की सूची बनाएं। समूह में आए नामों को एक एक कर श्याम पट पर संकलित करें। ब्रह्मांड में कई छोटे, विशाल और अति विशाल पिंड हैं। इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, आकाशगंगा, चंद्रमा सभी खगोलीय पिंड हैं। इन्हें हम आकाशीय पिंडों के रूप में जानते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारों आदि के बारे में सुना होगा। यह भी खगोलीय पिंड हैं, जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए इन्हें तारे कहते हैं। ऐसा ही एक तारा हमारा सूर्य है। सूर्य से दूर भी कई तारे हैं, जो सूर्य से भी अधिक दूरी पर होने के कारण छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देते हैं। कई तारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। ब्रह्मांड का विस्तार कल्पना से भी परे है। वेदों में भी अन्य रूप में यह वर्णित है। भारतीय पंचांग ऐसी गणित पर आधारित खगोलीय पुस्तक है, जिसमें विभिन्न खगोलीय पिंडों का नामकरण एवं उनकी गतियों का उल्लेख है। हजारों वर्ष पूर्व जब विद्युत एवं घड़ी की खोज नहीं हुई थी, तब समय, तिथि, मास का निर्धारण हमारे ऋषि आकाशीय पिंडों की स्थिति से करते रहे हैं। इसी आधार पर भारतीय पंचांग का निर्माण हुआ है। गतिविधि 12.2। शिक्षक विद्यार्थियों से निम्न प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करें। आकाश में पूर्ण चंद्रमा कब दिखता है? आकाश चंद्रमा विहीन कब होता है? चंद्र ग्रहण कब तथा कौन से दिन होता है? हमारे घरों में या आसपास भवन निर्माण में कार्यरत कारीगर एवं मजदूर किस दिन अवकाश रखते हैं? इन सब बातों की जानकारी हमें दैनिक जीवन में कहां से प्राप्त होती है? शिक्षक छात्र छात्राओं से प्राप्त उत्तरों को सही रूप में व्यक्त करें
तथा स्पष्ट करें कि इन सबकी जानकारी वर्षों पूर्व भारतीय पंचांग में उल्लेखित है। पंचांग में दी गई गणनाओं के आधार पर किसी खगोलीय घटना का पहले से ही पता लगाया जा सकता है।
अब मैं इसे समझाता हूं। खगोलीय पिंड के बारे में यहां पर बताया गया है तथा दो गतिविधियां भी बताई गई। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मांड में कई छोटे, विशाल और अति विशाल पिंड हैं। इन्हीं पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे सूर्य, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, आकाशगंगा, चंद्रमा, यह सभी खगोलीय पिंड हैं। क्योंकि इन सभी को हम आकाश में देखते हैं, इसलिए इन्हें हम आकाशीय पिंड भी कह सकते हैं। मैं आपको एक कार्य सौंपता हूं। आप अपने घर में किसी बड़े से और किसी बुजुर्ग से जरूर पूछें कि सप्तऋषि किसे कहते हैं। उनसे आप ध्रुव तारा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या रात में खुद उनके साथ छत पर या किसी पार्क में खड़े होकर आसमान की ओर देखते हुए ध्रुव तारा की खोज कर सकते हैं, सप्तऋषि को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जानकारी आकाशीय पिंडों के बारे में बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी इन सब चीजों में जरूर बढ़ेगा। इसके साथ ही आप किसी भी भारतीय पंचांग के बारे में जानकारी हासिल करें तथा कोशिश करें कि आपके पास एक भारतीय पंचांग उपस्थित हो, ताकि आप इस चैप्टर के पढ़ने के साथ साथ भारतीय पंचांग में कुछ खास जानकारियां हासिल कर सके तथा भारतीय पंचांग को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, उनमें लिखी जानकारियों का मतलब क्या होता है, वह किन गतियों पर निर्भर होती हैं, क्या आकाशीय पिंडों से वह सब जानकारियां हासिल होती हैं तो कैसे होती हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर तभी हासिल हो सकता है जब आपके पास कोई पंचांग उपस्थित हो। अब मैं आगे पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ किताब को देखिए। भारतीय पंचांग। भारतीय पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। ये 5 अंग निम्न हैं। मैंने पहले भी कहा है, पंचांग शब्द का अर्थ क्या होता है? पंच का मतलब होता है 5 और अंग का मतलब होता है भाग। तो 5 भागों से मिलकर जो बने उसे पंचांग कहते हैं, और यही है हमारा भारतीय पंचांग, जिसके 5 भाग हैं। वो हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब इन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है तिथि। इसे अंग्रेजी महीने की दिनांक के रूप में समझ सकते हैं। इसका संबंध चंद्रमास की दिनांक से है। एक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं। प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। इनमें से 2 तिथियां पूर्णिमा एवं अमावस्या है। दूसरा है वार। इसका संबंध सप्ताह के दिनों से है, जो 7 होते हैं। तीसरा है नक्षत्र। इसका संबंध चंद्रमा के क्रांति पथ के उस आकाशीय भाग से है जहां चंद्रमा उस समय स्थित होता है। इस आधार पर 27 नक्षत्र माने गए हैं। 4 योग। इसका संबंध सूर्य तथा चंद्र गति में किसी समय उत्पन्न अंतर से है। योग भी 27 होते हैं। और 5वां भाग है करण। तिथियों के सूक्ष्म प्रभाव को जानने के लिए प्रत्येक तिथि के 2 भाग मान्य किए हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तो अब हमने इन 5 भागों के बारे में जानकारी इकट्ठी की है। तिथि, जिसे दिनांक के रूप में जाना जाता है। वार, सप्ताह में जो दिन होते हैं उन्हें कहते हैं। नक्षत्र, चंद्रमा के क्रांति पथ के आकाशीय भाग से संबंधित है जहां चांद उस समय उपस्थित होता है। योग, चंद्रमा और सूर्य की गति से संबंधित है। और करण, तिथियों के आधे भाग को कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आप अपने किताब में पेज 142 को देखिए।
इनके अतिरिक्त भी भारतीय पंचांग विभिन्न जानकारियों को सटीक रूप से प्रस्तुत करता है। इनमें से कुछ निम्न है। पहला, विभिन्न शहरों के लिए दैनिक सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय, चंद्रमा के दिखने का समय, सूर्य चंद्रमा एवं विभिन्न ग्रहों की गतियां, नक्षत्र राशियों में ग्रहों का परिभ्रमण, दैनिक तिथियां, इनमें वृद्धि एवं क्षय राशियां, भारतीय महीनों का विवरण। यह सब कुछ खास जानकारियां होती हैं जो भारतीय पंचांग में लिखी रहती हैं। इन सबको जानने और समझने के लिए आप पंचांग में जरूर देखें। भारतीय पंचांग समय काल की दैनिक गणनाओं एवं खगोलीय पिंडों की स्थिति का प्रतिपल का विवरण दर्शाता है। पंचांग के 5 अंगों में से नक्षत्र एवं तिथियों की विस्तृत जानकारी इस अध्याय में दी जा रही है। यहाँ एक विशेष जानकारी और दी हुई है, वो है वर्तमान में प्रचलित पंचांग भारतीय पंचांग पर आधारित है। इसमें विभिन्न खगोलीय घटनाओं के साथ साथ सभी धर्मों के त्योहारों एवं पर्व विशेष का उल्लेख भी मिलता है, साथ ही समुदाय विशेष की भाषा में भी उपलब्ध होते हैं। तो यहां से हमने पंचांग के बारे में जाना, पंचांग में क्या क्या लिखे होते हैं और वे जानकारियां कैसे हासिल होती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हम नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर सौरमंडल एवं उनके ग्रहों के बारे में भी अब पढ़ेंगे। आप अपने किताब के पेज 143 को देखिए। नक्षत्र आकाश में तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। इनमें तारे परस्पर यथावत अंतर से दृष्टिगोचर होते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर है और सूर्य की परिक्रमा नहीं करने के कारण स्थिर जान पड़ते हैं। इन तारों के समूह की पहचान स्थापित करने हेतु नामकरण किया गया। यह नाम उन तारों के समूह को मिलाने से बनने वाली काल्पनिक आकृति के अनुसार दिया गया। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। चंद्रमा के कांति पथ को 27 भागों में विभाजित कर 27 नक्षत्रों का नामकरण किया गया है। नीचे दी गई सारणी 12.1 में उनका विस्तृत वर्णन है। तो इस तरह से हमने नक्षत्र के बारे में जाना। नक्षत्र क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र कितने होते हैं, यह 27 होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के क्रांति पथ को 27 भागों में विभाजित किया गया है और उन्ही 27 भागों को नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम इन 27ों के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है, इन नक्षत्रों का नाम क्या है। जैसा कि हमने पढ़ा, नक्षत्र तारों का समूह है, तो हर एक नक्षत्र में कितने तारे होते हैं यह भी जानेंगे। और इन नक्षत्रों का जो काल्पनिक आकृति है वह किस प्रकार का है, उस आकृति के नाम को भी हम जानेंगे। आप भी मेरे साथ किताब में पेज 144 को देखिए। वहां सारणी 12.1 में सबसे पहले क्रम संख्या, फिर नक्षत्र का नाम, उसके बाद समूह में तारों की संख्या, उसके बाद आकृति या पहचान दी गई है। सबसे पहले मैं नक्षत्र का नाम पढ़ूंगा, उसके बाद समूह में तारों की संख्या और फिर आकृति या पहचान बताऊंगा। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। इसमें 3 तारे होते हैं और इसकी आकृति घोड़ा की तरह होती है। दूसरा भरणी, तारों की संख्या 3, आकृति त्रिकोण। तीसरा है कृतिका, समूह में तारों की संख्या 6, आकृति अग्निशिखा। चौथा रोहिणी, 5 तारे, गाड़ी की तरह आकृति होती है। पांचवा मृगशिरा, 3 तारे, हरिण मस्तक की तरह दिखता है। छठा आद्रा, 1 ही तारा होता है और उज्जवल पहचान है इसकी। सातवां पुनर्वशु, 5 या 6 तारे हो सकते हैं, इसकी आकृति धनुष की तरह होती है। 8 पुष्य, 1 या 3 तारे, मणिकर्ण्य वर्ण की तरह दिखता है। अगला नक्षत्र है अश्लेषा, 5 तारे, कुत्ते के पूंछ की तरह। 10वां है मघा, 5 तारे होते हैं और हल की तरह दिखाई देता है। 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 2 तारे, खटवाकार। उत्तरा फाल्गुनी, 2 तारे, शय्याकार। हस्त, 5 तारे, हाथ का पंजा। चित्रा, 1 तारा, मुक्तावत उज्ज्वल। 15वां स्वाति, 1 तारा, कुंकुम। 16वां विशाखा, 5 व 6 तारा हो सकता है। तोरण पहचान है। 17वां अनुराधा, 7 तारे होते हैं और सूप की तरह दिखाई पड़ता है। ज्येष्ठा, 3 सर्प की तरह। मूल, 9 या 11 तारे, शंख की आकृति। पूर्वाषाढ़, 4 तारे, हाथी दंत। उत्तराषाढ़, 4 तारे, सूप। श्रवण, 3 तारे, बाण या त्रिशूल की तरह। धनिष्ठा, 5 तारे, बाजा इसकी पहचान है। सतभिषा, 100 तारे, मंडलाकार आकृति। पूर्व भाद्रपदा, 2 तारे, घंटाकार। उत्तर भाद्रपदा, 2 तारे, 2 मस्तक। रेवती, 32 तारे, मछली की आकृति की तरह दिखाई पड़ता है। तो इस तरह हमने 2700 नक्षत्र के बारे में पढ़ा और उनमें तारों की संख्या को भी जाना तथा उनकी आकृति और पहचान कैसी होती है हमने यह भी पढ़ा। इसके बारे में आप किसी अनुभवी के साथ आसमान में देखते हुए इन सभी नक्षत्रों के बारे में और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। 28वें नक्षत्र का नाम अभिजीत है, जिसे पूर्वाषाढ़ के भीतर ही मान लिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सौर्यमंडल एवं इसके ग्रह। काफी रोचक जानकारी यहाँ हमें मिलेगी। हमारे सौर्यमंडल में कितने ग्रह हैं और सभी ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी को किस प्रकार से पहचाना जाता है, क्या हम उन्हें अपने ग्रह से देख सकते हैं और देख सकते हैं तो किधर देखेंगे, यह जानकारी हमें यहाँ मिलेगी। मुझे आशा है कि आप सभी भी इसे पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आपने पूर्व कक्षाओं में हमारे सौर्यमंडल के बारे में पढ़ा। यहाँ पुनः सौर्यमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी सारांश में जानेंगे। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड से मिलकर सौर्य परिवार बना है। सौर्य परिवार में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और कई ज्ञात अज्ञात पिंड हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह तथा ग्रहों के परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ये सभी ग्रह एवं उपग्रह हमारे सौर्य परिवार के सदस्य हैं। हमारी पृथ्वी खगोलीय पिंडों में ग्रह की श्रेणी में आती है। ग्रहों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, ये केवल सूर्य या अन्य तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। सूर्य हमारे सौर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें सौर्यमंडल का 99% से भी ज्यादा द्रव्यमान निहित है और पृथ्वी से लगभग 10,00,000 गुना बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी पर वर्षा होना, दिन रात होना एवं ऋतु परिवर्तन का कारण सूर्य है। पेड़ पौधे एवं समस्त जीवों के जीवन चक्र पर इस सौर्य ऊर्जा का प्रभाव है। आधुनिक युग में 8 खगोलीय पिंडों को ग्रहों की परिभाषा में रखा गया है, परंतु भारतीय पंचांगानुसार ग्रहों की संख्या 9 है। प्रस्तुत अध्याय में दोनों प्रकार से ग्रह एवं उनकी गतियों के बारे में जानेंगे। यहां पर हमने यह जाना कि सौर्य परिवार किसे कहते हैं और ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, सौर्यमंडल में कितने ग्रह हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पिंड कौन सा है, यह सब नीचे दिए गए एक सारणी से भी हम जानेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, कई ज्ञात अज्ञात पिंड सभी हमारे सौर्य परिवार के भाग हैं। ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। ग्रह किसे कहते हैं? जो पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और उपग्रह उसे कहते हैं जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। इसे भी समझना और याद रखना बेहद जरूरी है। पृथ्वी क्या है और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी ग्रह की श्रेणी में आता है और चंद्रमा उपग्रह की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही। हमारे ग्रह का सबसे ज्यादा द्रव्यमान पिंड कौन सा है? वह सूर्य है। लगभग 99% द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। और पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 10,00,000 गुना बड़ा। सूर्य किससे बना है? इसका उत्तर है सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो यह सब हमने कुछ जानकारियां जो हम पहले से भी जानते थे इन्हें फिर से एक बार रिवाइज किया है। अब आगे जो सारणी है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रह एवं उनकी गतियां सारणी 12.2 में दी गई हैं। इसे मैं एक एक करके पढ़ता हूं। इस सारणी में ग्रहों के नाम, द्रव्यमान, व्यास, सूर्य से दूरी, कक्षीय गतिकाल, घूर्णन गतिकाल दिए गए हैं। सबसे पहले बुध के बारे में, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण के बारे में दी गई जानकारी है। इस सारणी से संबंधित मैं कुछ प्रश्न बोलता हूं, आप स्वयं उसके उत्तर इस सारणी को देखकर खोजें। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है और किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? किस ग्रह का व्यास सबसे ज्यादा है और किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? कौन ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है और कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? किस ग्रह की कक्षीय गतिकाल सबसे ज्यादा है और किस ग्रह की कक्षीय गतिकाल सबसे कम है? घूर्णन गतिकाल किस ग्रह की सबसे ज्यादा है और किस ग्रह की सबसे कम है? यह आप इस सारणी में देखकर खोजें और उन्हें याद भी रखें। अब मैं आगे पढ़ता हूं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्राग सम्मेलन 24 अगस्त 2006 के अनुसार सौर्यमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ग्रह, दूसरा पौने ग्रह, तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड। पहला ग्रह, इसमें उपरोक्त 8 ग्रहों को मान्यता दी गई है। इनमें से प्रथम 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहां धरातल है। शेष 4 पृथ्वी, शनि, अरुण एवं वरुण विशाल गैस से बने भारी ग्रह हैं। दूसरा बौने ग्रह, यम अर्थात प्लूटो, एरिज, सिरिज आदि बौने ग्रह हैं। तीसरा लघु सौर्यमंडलीय पिंड, इनमें 166 मतलब 166 ज्ञात उपग्रह एवं छोटे खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी, धूमकेतु, उल्काएं, ग्रहों के बीच की धूल शामिल हैं। अंतरिक्ष में परिभ्रमण करते धूल और गैसीय पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तथा पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकने लगते हैं। इनमें से जो पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं उन्हें उल्का कहते हैं, और जो पूर्णतया जल नहीं पाते चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं उल्कास्म कहे जाते हैं। नीचे ग्रहों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां भी दी जा रही हैं। पहला, बुध। बुध में वायुमंडल नहीं है, यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। यहां दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। दूसरा, शुक्र। शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। इसकी सतह चट्टानों व ज्वालामुखी से भरी पड़ी है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, जिसके कारण इसे भोर का तारा व सांझ का तारा कहते हैं। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, इसलिए हमें सूर्योदय पूर्व में तथा सूर्यास्त पश्चिम में देखता है। शुक्र एवं अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। हाल ही की खोजों में यहां जीवन की संभावना बनी है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस व डिमोन्स हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका प्रसिद्ध लाल धब्बा वास्तव में अशांत बादलों के घेरे में स्थित विशाल चक्रवात है। इसके 16 उपग्रहों में कैनिमीड, आयो, यूरोपा, कैलेश्वो आदि प्रमुख हैं। शनि ग्रह के चारों ओर की प्रसिद्ध वलय वास्तव में हजारों की संख्या में सर्पीली तरंगों की पेटियां हैं। इसके चारों ओर गैस व हिमकण के छोटे छोटे चट्टानों के मलबों का घेरा है। इसके मुख्य उपग्रह फोबो, टेथिस तथा मीमास है। सारणी 12.2 से स्पष्ट है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसका परिभ्रमण काल अथवा कक्षीय गति काल उतना ही अधिक है। एक विशेष जानकारी यह भी है, आपको पता है भारत के वैज्ञानिकों ने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रवेश कराने में सफलता प्राप्त कर ली है। यह मंगलयान प्रथम पूर्णतः भारत में निर्मित हुआ है। इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया, जो 11 मास बाद मंगल की कक्षा तक पहुंचा। भारत द्वारा पहले ही प्रयास में यह कम खर्च एवं सफलता प्राप्त करने का पूरे विश्व के अंतरिक्ष अभियानों में प्रथम उदाहरण है। यह जानकारी सचमुच बहुत ही गौरवपूर्ण है। हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने मंगल पर पहले बार में ही सफलता प्राप्त की है। इसे हम प्रेरणा के रूप में भी देखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार जिन खगोलीय पिंडों के प्रभाव में हमारी पृथ्वी है उन्हें ग्रह माना गया है। इन ग्रहों की प्रकृति एवं गतियां लगभग वही हैं जो आधुनिक विज्ञान ने गणना करके प्राप्त की है। भारतीय पंचांग अनुसार ग्रह एवं गतियां, यहां पर 9 ग्रह हैं तथा उन्हीं सभी ग्रहों का राशि योग अर्थात एक राशि पर गति बटा समय दिया गया है। सबसे पहले सूर्य एक राशि पर 1 मास, चंद्र एक राशि पर 2.25 दिन, मंगल एक राशि पर 1.5 मास, बुध एक राशि पर 0.75 मास, गुरु एक राशि पर 13 मास, शुक्र एक राशि पर 0.75 मास, शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष, राहु एक राशि पर 1.5 वर्ष, केतु 1.5 वर्ष। राहु और केतु छाया ग्रह की श्रेणी में है। इन्हें चंद्रमा के क्रांति वृत्त के दोनों ओर बिंदु रूप में माना गया है, अर्थात चंद्रमा की वह स्थितियां हैं जब ग्रहण की घटना घटित होती है। भारतीय पंचांग में ग्रहों की अन्य गतियां का उल्लेख भी है, जिनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। एक विशेष जानकारी यह भी है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.14 सेकंड में पहुंचता है, जबकि प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो इस प्रकार से हमने अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पढ़ा और कुछ विशेष जानकारियां भी हासिल की। हमारे सौरमंडल से संबंधित जो आंकड़े हैं हमने उन्हें भी पढ़ा। ग्रहों के बारे में विशेष जानकारी यहाँ हासिल की, जैसे किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बोलते हैं, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बड़ा है, किस ग्रह का व्यास सबसे ज्यादा है तथा किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अब हम जान चुके हैं। इसके बाद अगले सेशन में हम राशियां उत्तरायण तथा दक्षिणायन, बुध एवं शुक्र, पारगमन, तिथियां, भारतीय महीनों के नामों का आकाशीय संबंध, भारतीय वैज्ञानिकों की जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ेंगे। तब तक मैं स्वप्निल विवेक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।